ये गीता का श्लोक चलते फिरते चित्त की प्रसन्नता और मुखमंडल का ओजस्वी तेजस्वी बनना और जीवन विघ्न बाधाओं के बीच भी निर्लेप नारायण के सुख से ओतप्रोत रहे, ये ऐसा श्लोक है। भगवत गीता 13वें अध्याय का 28वां श्लोक। समम पशन्य सर्वत्र, समम पशन्य सर्वत्र, सम अवस्थितम ईश्वरम, न हीन सत्यम आत्मानम, न हीन सत्यम आत्मानम, ततो याति पराम गति, ततो याति पराम गति। वह पुरुष सर्व भाव में सम भाव से रहने वाला परमेश्वर को देखता है और अपना अपने हाथों से अपना नाश नहीं करता, अर्थात राग द्वेष के वश नहीं होता। ऐसा पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। ये बहुत सरल उपाय है, अपने कल्याण के लिए बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं भगवान। जो भगवान को सब में सम देखता है, ऐसा नहीं कि गरीब में भगवान छोटा, अमीर में बढ़िया, पठित में भगवान बढ़िया और अनपठित में भगवान दूसरा, गुजराती में भगवान दो नंबर का और हिंदी में भगवान एक नंबर का और सिंधी में भगवान तीन नंबर का और यूरोपियन में भगवान चार नंबर का, नहीं, भगवान सब में समभाव और एक। जिस सत्ता से सिंधी और पंजाबी की आंख देखती है, उसी भगवत सत्ता से मारवाड़ी और सूरती लाला की आंख देखती। नेताओं का भगवान जुदा जुदा हो सकता है, लेकिन साधक का भगवान एक ही होता है। जय राम जी। बंबई का मुख्यमंत्री और शिक्षण मंत्री अलग, कर्नाटक का मुख्यमंत्री और शिक्षण मंत्री अलग, गुजरात का शिक्षण मंत्री और मुख्यमंत्री अलग, उनके सिद्धांत और संकेत और पार्टी अलग हो सकती, विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन साधक और भगवान का सिद्धांत अलग नहीं है, उनकी पार्टी अलग नहीं है। उसकी पार्टी तो एक नूरते सब जग उपजा, कौन भले कुन मंदे। जो कबीर जी का अनुभव है वही नानक जी का है। कबीर काशी में है और नानक पंजाब में है। जो नानक जी का अनुभव है वही अनुभव नरसी मेहता का सौराष्ट्र में है और वही अनुभव सिंध के साईं टेऊराम का है। वही अनुभव नैनीताल के जंगलों में समाधि में लगे हुए लीलाशाह बापू का वही अनुभव। उसमें शिक्षण मंत्री और मुख्यमंत्री भिन्न भिन्न नहीं होते। जैसे अखंड भारत अखंड है, ऐसे अखंड ब्रह्मांड अखंड एक सत्ता से ओतप्रोत है। ऐसा ज्ञान जिनको हो गया, उनके चित्त में जरा जरा बात से राग नहीं होगा, जरा जरा बात में द्वेष नहीं होगा। जो सब में सम भगवान को देखने का अभ्यास करेंगे, उनका राग और द्वेष शांत होता जाएगा। जिनका राग और द्वेष शांत होता जाएगा, उनके चित्त में शांति और मुख पे तेज स्वाभाविक ही आएगा। हाँ, छाया में रहने से, एयर कंडीशन में रहने से, मक्खन मलाइयाँ खाने से, अथवा यूरोप अमेरिका में रहने से चमड़ी का तेज तो आ सकता है, लेकिन मुख का तेज मतलब आध्यात्मिक तेज की बात अलग। अष्टावक्र के शरीर में 8 खोड़ खापड़ है, टेढ़े मेढ़े अंग हैं, फिर भी अष्टावक्र का अद्वैत ज्ञान इतना तेजस्वी है कि 12 वर्ष का अष्टावक्र काली काया नाटा कद किशोर अवस्था, फिर भी विशाल काय विशाल राज्य के धनी राजा जनक उनके चरणों में प्रणाम करके ज्ञान की याचना करते हैं। ये ब्रह्म विद्या की महिमा है, ये समत्व ज्ञान की महिमा है। समत्व योगम उच्चते, कई योग हैं, हठ योग, लय योग, कुंडलनी योग, भक्ति योग, निष्काम कर्म योग, नादानुसंधान योग, इन सब योगों में समत्व योग बड़ा सहज है और सबसे ऊंचा फल देने वाला, सबसे बड़ा भारी फल देता है। समत्व योगम उच्चते, जो भगवान हर देश में है, जो भगवान हर समय में है, जो भगवान हर दिल में है, जो भगवान हर श्वास में है, ऐसा सर्वत्र सदा सब काल में ओतप्रोत भरा हुआ, इतना आसान भगवान नहीं पाया या नहीं जाना, तो फिर कौन सा भगवान पाओगे और कौन से भगवान को जानोगे? जो हर देश में है, हर श्वास में है, हर आंख के द्वारा देख रहा है, हर कान के द्वारा सुनने की सत्ता दे रहा है, और दिल की हर धड़कन जिसकी सत्ता से दिखती है और चलती है, ऐसे भगवान को पाना कठिन है, तो बताओ फिर सुगम कौन सा भगवान मिलेगा? जो एक जगह पर है दूसरी जगह नहीं, वो तो फिर बहुत मेहनत से ढूंढना पड़ेगा। जो एक समय में है दूसरे समय में नहीं है, तो समय का इंतजार करना पड़ेगा। जो एक एक दिल में है दूसरे दिल में नहीं है, तो वहां चेकिंग करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तुम किसी को ना कहो तो मैं एक प्राइवेट बात कह दूं तुमको, जय श्री कृष्ण बोलो कि बड़ी जय श्री। हमारे एक मित्र संत ने कहा कि मेरे कुछ डॉक्टर भगत हैं और वो ध्यान करते, उनको अनुभूतियां होती है, मेरे से पूछने को आते हैं, लेकिन मैं जानता नहीं। वो मेरे को बाप जी बोलते और मैं ऐसे आशीर्वाद कर देता हूँ, लेकिन उनको जो अनुभूतियां हो रही है और कौन सी यात्रा है मेरे को खबर नहीं, तो तुम जरा मेरे भक्तों को थोड़ा मार्गदर्शन देते जाना, मेरे को उन्होंने कहा। तो मैं आनंद होके गुजरा, आज से 20 साल पहले की बात है। तो सुबह का समय था, मैंने गाड़ी ऐसी जगह पे खड़ी करी, तो वो बंगलों में से भागते हुए आया, हाँ बापू 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 करके। 20 साल पहले इतना लोक परिचय मेरा नहीं था। उन्होंने बड़े आदर से मेरे को पूजा के रूम में बिठाया, बड़ी पूजा की, और देखते देखते बहुत लोग इकट्ठे हो गए, कई उसमें डॉक्टर थे, आनंद एग्रीकल्चर विभाग में काम करने वाले भी कई ऑफिसर आदि थे। तो उसमें एक महिला ने पूछा, वो भी डॉक्टर थी, उसके पति भी डॉक्टर थे, उसके दूसरे कोई रिश्तेदार भी डॉक्टर थे, ऐसे 8 डॉक्टर थे। उन्होंने एक सवाल पूछा कि बापू भगवान बधाना हृदय में छे, ये बात तमे मानो छो? मैं कीधु हूं ना मानू तो छे, लो जय श्री कृष्ण। मारा न मानवाथी ए वालो वयो जाय एवू नथी हो भाई साहब, हूँ मानू तो छे, न मानू तो छे, हूँ नगारा वगाड़ू के नथी नथी तो छे, आपणे बधा भेगा मळी नगारा वगाड़ी के सूर्य नथी सूर्य नथी तो सूर्य वयो जाय है के, आपणे बधा नगारा वगाड़ीने सोगन खाई के चंद्रमा नथी चंद्रमा नथी चंद्रमा नथी, एनाथी फरक पड़े नहीं। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, गीता में लखेलू छे कि बापू हाँ गीता में लिखा है, हम जानते हैं, इसीलिए आपसे पूछते, तो आपका क्या मानना है? बोले मेरा मानना तो है गीता के अनुसार है, लेकिन मैं न भी मानूं फिर भी भगवान है। तो कि बापू सबके हृदय में है, तो मैं कि तो हाँ सबके हृदय में। तो डॉक्टर डॉक्टर आपस में एक दूसरे के सामने देखने लगे और जरा थोड़ा ख्याल तो आ जाता है, मुख चमक रहा है कि शंका है कि क्या है, थोड़ा सा स्माइल एक दूसरे को दिया, फिर मेरे आगे हाथ जोड़े, मैं क्या नहीं तुम्हारे दिल में क्या शंका है? बोले बापू अमे आ बधा 8 जन छे, डॉक्टर छे, आ फलाना भाई छे, आ फलाना बेन छे, आ फलाना बेन, आ हार्ट ना स्पेशलिस्ट छे, आ पण हार्ट स्पेशलिस्ट छे, आ सर्जरी स्पेशलिस्ट छे, आ फलाना छे। मैं क्या आखिर क्या? बोले बाबा जब ऑपरेशन होता है तो हम लोग साधक भी हैं डॉक्टर भी हैं, तो किसी पेशेंट का हार्ट की सर्जरी होती है अथवा ऑपरेशन होता है तो हम माइक्रोस्कोप लेकर बहुत ट्राई करते हैं कि कहीं भगवान दिख जाए। मेरे को वो बात याद आई, एक चेला ने गुरु को कहा कि गुरुजी जब तक हम भगवान नहीं देखे तब तक कैसे मानेंगे? जब लग्न देखूं नैन तब लग्न मानूं तुम्हारे बैन। गुरु ने कहा भगवान कोई मकान दुकान या जड़ वस्तु थोड़े के आंखों से दिखेगा। तो बोले गुरुजी जरा चख ले। बोले भगवान कोई रसगुल्ला थोड़े कि तू चख लेगा। तो गुरुजी भगवान की सुगंध क्या है? बोले भगवान कोई फूल थोड़े है जो सूंघेगा। तो बोले भगवान को स्पर्श करवा दो फिर माने। तो भगवान कोई रुई का गद्दा या डल्लब का गद्दा थोड़े के तू टच करके मानेगा। तो बोले जो देखने में नहीं आवे, सूंघने में नहीं आवे, स्पर्श करने में नहीं आवे, चखने में नहीं आवे, सुनने में नहीं आवे, तो उसको हम कैसे माने? गुरु ने कहा तू माने चाहे न माने फिर भी वो है। प्रणाम तो करता नहीं, नम्रता तो है नहीं गुरु के लिए, श्रद्धा तो है नहीं। बड़ा आया भगवान को देखने के लिए। चल कभी कभी गुरु डांट कर मेढ़ा मार के भी हमारी योग्यता बढ़ा देते। प्रणाम तो करता नहीं। बोले गुरुजी अगर प्रणाम करने से भगवान मिलता है तो मैं दंडोत प्रणाम करता हूं। वो लंबा पड़ा और गुरु भी हमारे जैसे थे, कोई जवान गुरु थे, बराबर कस के अणीदार घुस्सा मारते धड़ा धूम बेड़ाओ पर बराबर नो एक चौड़ी दीदी फेंट। अरे रे रे मर गए, अरे अरे गुरु जी भगवान दिखा रहे हो कि पिटाई कर रहे। ओरे बाप लिया रे, ओई रे केला हूं थे बहु आगे बहु दुख है, बहुत दुखता है। अरे कहां दुखता है? बोले गुरु जी यहां। बोले आंखों से तो दिखता नहीं? गुरु ने बोला आंखों से तो दिखता नहीं, मैं कैसे मानूं? अच्छा कान लगा कर सुनूं? बोले गुरुजी कान से नहीं सुनाई पड़ेगा। बोले अच्छा जरा सूंघ के देखूं कैसा है दर्द? बोले नाक से नहीं पता चलेगा। बोले चख के देखता हूं। चल खमीस उतार, बैरो खुल्लो कर, पीठ खुली कर, मैं जरा चाट के देखूं दुख कैसा है। बोले गुरुजी चाटने से चखने से पता नहीं चलेगा। बोले जरा दबा के देखूं। बोले नहीं 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 प्लीज प्लीज प्लीज। गुरु ने कहा जब आंख से दिखता नहीं, कान से सुनाई नहीं पड़ता, नाक से सूंघने में नहीं आता और हाथ से दिखने में स्पर्श में नहीं आता, तो मैं कैसे मानूं कि तेरे को दर्द हो रहा है? गुरुजी जिसको लगा होता है ना चोट उसी को मालूम है। वो तो मैं जानता हूं, मेरा अनुभव है। गुरु ने कहा जैसे तू जानता है तेरा अनुभव, ऐसे मैं जानता हूं भगवान है मेरा अनुभव। ये आंखों से जो दिखेगा उसमें माया का कवर है, इसलिए ज्ञान की आंख चाहिए। जैसे आंखों से आकाश दिखता है, तंबू जैसा दिखता है, कढ़ावे जैसा दिखता है, क्योंकि हमारी आंख उसी डिजाइन की बनी है इसलिए वो ऐसा दिखता है। आंख से जो दिखता है वो माया है, लेकिन जिसकी सत्ता से दिखता है और जिसकी सत्ता में बना है, जिसकी सत्ता से पैदा हुआ, जिसकी सत्ता से टिका है, जिसकी सत्ता में लीन होगा, वो आंख से नहीं दिखता लेकिन वो ही वो है। उसके सिवा बाकी माया का कोई वजूद नहीं है। ये हार आंख से दिखता है। इसमें पांच चीजें हैं, अस्तित्व है, भातित्व है और प्रियत्व है, नाम और रूप है, ये पांच है। तो ये दो दिन पहले किसान का खेत में माल था, खेती थी, एक दिन पहले मालिक यहां फूल थे और आज ये हार बन गया। दो चार घंटे पहले किसी भगत का चीज था और अभी ये समिति की प्रॉपर्टी हो गई जयराम जी की। किसान बोलता है हमारा, फिर माली बोलता है हमारा, जिसने सज्जन ने खरीदा वो बोलता है हमारा, अभी हम कहेंगे हमारा। हमारा हमारा बदलता जाएगा, नाम और रूप बदलता जाएगा, लेकिन वास्तविक में ये जिसका है वही जा रहा है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इसका जल भाग जल में जा रहा है, इसका सुगंध भाग सुगंध के तरफ बिखर रहा है और अंत में सूख जाएगा तो अग्नि तत्व है, अग्नि में चला जाएगा, जला दो या खाद बना दो। ऐसे ये शरीर अगले जन्म में किसी का बेटा था, किसी रूप में था, जन्मे था मल के घर, तो बाप बोलता मेरा बेटा है, भैया बोलता मेरा भाई है, मामा बोलता है भांजा है, काका बोलता है भतीजा है। शादी हुई, पत्नी कहती मेरा पति है। छोकरा हुआ, बोले मेरा पापा है। शिष्य हुए, बोले मेरा गुरुजी है। दोस्त हुए, बोले मेरा भाई बंद है। शत्रु हुए, बोले ये मेरा शत्रु है। ये मेरा पड़ोसी है, ये मेरे जात का है, ये मेरे नात का है, ये मेरी पार्टी का है, ये मेरे गांव का है, ये मेरे राज्य का है, ये मेरे मातृभाषा का है, ये मेरे देश का है, ये सब खिचड़ी संसार हम लोगों का बनाया हुआ है। बाकी इसमें पहले भी था, अब भी है, शरीर रहने के बाद भी जो रहेगा वो परमात्मा सत्ता है। अस्ति अस्तित्व तो पहले भी था, इस पांच भूत के शरीर में अभी जो है, अगर ये शरीर पड़ जाता है तो इसमें अग्नि तत्व महाअग्नि में मिल जाएगा, वो पहले भी था, वायु वायु में मिल जाएगा, जल जल में मिल जाएगा, पृथ्वी हड्डी और राख में मिल जाएगा। तो ये अस्ति तत्व पहले भी था, अभी है, बाद में रहेगा। नाम और रूप बदलता है, ऐसे परमात्मा पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा। लेकिन ये जो नाम और रूप है खिचड़ी, वो हमारे बनाए हुए हैं, ये माया के पर्दे में मायापति छुपा है, बाकी अभी भी मौजूद है। जैसे पानी के ऊपर लील हरियाली जम जाती, सेवाल जम जाती पानी के ऊपर, तो पानी की सत्ता से सेवाल बनती और पानी को ही ढकती है, ऐसे ही परमात्मा की सत्ता से माया स्पूर्ण पैदा होता है और उसी परमात्मा को ढके हुए हैं। कौन? बोले मैं। वही कौन? अरे ओड़ख्यो नहीं, मारू नाम छगन। आहा, अरे छगन भाई बहुत आड़ा थे, आओ बेसो खावन खावन है। मैं जहां से उठा वो परमात्मा चेतना है। छगन नाम सुन सुनकर पक्का हुआ मैं छगन। अगर माँ सुना देती या कोई बार नाम रख देती मगन, तो अपने को मगन मानते, और मोहन नाम रख देते तो अपने को मोहन मानते, और जुगलू नाम रख देते तो अपने जुगलू ही मानते। और कभी कभी हमने तो बबलू नाम सुना, बड़ी उम्र के भी नाम क्या के बबलू। एक लड़के का नाम है विकी, दुबई से आया विकी। मैं क्या विकी? तो भाई 7,000 की गाड़ी मिलती है, जानकी का बेटा 7,000 का थोड़े है। इसके बेटा का नाम है विकी, नहीं विकी नहीं, विक्रम नाम रख। लेकिन जो नाम रख दिया अपने को माना, लेकिन जिस पर नाम रखा जाता है वो शरीर, और शरीर जिसकी सत्ता से चलता है वो परमात्मा, उसके हृदय में पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा। आद सत्य जुगात सत्य है भी सत्य, नानक हो से भी सत्य, सो साहेब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। तो के बापू ये बात थी तो लागे छे के भगवान बधाना हृदय मां छे, पण अमे माइक्रोस्कोप थी ट्राई करी छे तो देखाता नथी। मैं कीधु माइक्रोस्कोप से माया दिखेगी, तो माइक्रोस्कोप से संसार की प्रकृति देखेगी। प्रकृति जिसके आधार पर है वो परमात्मा इन आंखों से या माइक्रोस्कोप से क्या देखेंगे? इन आंखों से जिसको भगवान देखे, वो भगवान ने माया का रूप धारण किया, फिर चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे और कोई भगवान हो। जब माया विशिष्ट चैतन्य बनता है तो इस मायावी आंख से दिखता है, बाकी का वास्तविक चैतन्य शुद्ध परब्रह्म परमात्मा जो कण कण में है, हर देश में है, हर काल में है, हर समय में है, हर जगह है, हर दिल में है, और हाजरा हाजुर अभी भी तुम्हारा आत्मा होकर बैठा है, उस परमात्मा को तो विचार की आंख से ही देखना पड़ेगा। इसीलिए बुद्धि की विशेषता चाहिए, सत्संग के द्वारा बुद्धि का विकास करे, भाव का विकास करे, तो परमात्मा हमारा आत्मा है। मैंने डॉक्टरों को बताया कि तुम डॉक्टर हो, तुमको पता है कि मनुष्य ने कभी क्रोध किया, कभी प्यार किया, कभी भयभीत हुआ, कभी चिंतित हुआ, बहुत सारा करता है। अब उसका हार्ट, उसके फेफड़े, उसके कलेजे ऑपरेशन करके पुर्जा पुर्जा करके ढूंढो तो उसका तुमको प्रेम कहाँ किया नहीं दिखेगा, लोभ कहाँ है वो नहीं दिखेगा, क्रोध कहाँ पर से किया वो नहीं दिखेगा। आदमी तो प्रेम भी करता है, नफरत भी करता है, लेकिन प्रेम और नफरत इन पुर्जों से आंखों से खोल के देखो तो नहीं दिखेगी। तो जब ये विकार भी आंखों से नहीं दिखते हैं, पुर्जा पुर्जा करके हटा के देखो तो आंखों से नहीं दिखते, तो निर्विकारी नारायण आंखों से कैसे दिखेगा? निर्विकारी को देखने के लिए तुम्हें निर्विकारी तत्व का अनुसंधान करना पड़ेगा। दूसरी बात, ये मान लो गुलाब का फूल है, गुलाब के फूल को देखने के लिए तो आंख चाहिए, लेकिन इसका स्वाद आंख नहीं बताएगी, स्वाद बताने के लिए जीभ चाहिए, इसकी सुगंध जीभ और आंख नहीं बताएगी, सुगंध के लिए नाक चाहिए, और इसके शब्द के लिए कान चाहिए, और कितना कठोर कोमल है स्पर्श चाहिए, इसके अलग अलग गुण को देखने के लिए अलग अलग इंद्रिय चाहिए, लेकिन निर्गुण नारायण को देखने के लिए वृत्ति ब्रह्माकार चाहिए, निर्गुण रोटी सबसे मोटी उसका भोग लगाता है, निरंजन वन में साधु अकेला खेलता है। कबीर जी ने बहुत सुंदर भजन गाया, निरंजन वन में साधु अकेला खेलता है, अंजन माना इंद्रियां, जहां इंद्रियों की पहुंच नहीं वह निरंजन वन, बखड़ माथे गौ वियाई उसका दूध विलोता है, माखन माखन साधु खाए छाछ जगत को पिलाता है, निरंजन वन में साधु अकेला खेलता है। एक सवाल आता है कि संसारी आदमी के पास अगर कोई अतिथि आता है तो उसको मक्खन देगा और खुद छाछ पिएगा, तो साधु तो और परोपकारी होते हैं, तो साधु मक्खन खाकर छाछ दूसरों को पिलाए, ये बात कैसे? भाई ये आध्यात्मिक अर्थ है, वो मक्खन मक्खन आत्मा का अनुभव प्रसाद तो साधु लेता है, लेकिन उस आत्मा के अनुभव को छूकर जो वाणी आती है वो छाछ रूप जगत को पिलाता है, मक्खन वाली छाछ, सेपरेट दूध की नहीं है, आखा दूध नी छाछ छे, छाछ हजम करे, मक्खन के कण हजम करे तो देर सवेर मक्खन खाने वाला भी बन जाएगा, इसलिए माखन माखन साधु खाए छाछ जगत को पिलाता है, निरंजन बन में साधु अकेला खेलता है, बखड़ माथे गौ भी आई उसका दूध भी लोता है, बखड़ माना टेकरे पर पहाड़ी पर, नीचे काम केंद्र है, लोभ केंद्र है, मोह और अहंकार मद मात्सर्य है, और ध्यान करते करते साधु की साधक की वृत्ति जब ऊपर होती है तब वो गौ माना सुषुम्ना का द्वार खुलता है, बखड़ माथे गौ भी आई उसका दूध भी लोता है, सोहम हम सोहम उसका दूध भी लोता है, आनंद रूपी माखन तो साधु का था लेकिन आनंद स्वरूप आत्मा को छूकर जो वाणी रूपी छाछ आती है वो लोगों को पिलाता है। राम तीर्थ ने कहा, जंगल में जोगी बसता है, गह रोता है गह हंसता है, मन उसका कहीं नहीं फंसता है, तन मन में चैन बरसता है, वो गाता मौला मत वाला जब देखो भोला भाला है, मन मन का उसका माला है, तन उसका एक शिवाला है, निरंजन बन में साधु अकेला खेलता है, मन उसका माला है, तन उसका शिवाला है, गह रोता है गह हंसता है, कभी तो अपने परमात्मा भाव को ब्रह्म भाव को याद करके हंसता है प्रसन्न होता है, तो कभी रोता है कि हरे साधक कह तो अरे अब कब मिलोगे, मीरा कभी हंसती है कभी रोती है, साधक के जीवन में भी कई बार हंसी आती कई बार रुदन आता है, गह रोता है गह हंसता है, कभी रोता है कभी हंसता है, दिल उसका कहीं नहीं फंसता है, तन मन में चैन बरसता है, बोले रोने वालों को चैन कैसे बरसता है? अभी मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि रुदन भी बहुत सारे रोगों को बहा देता है, घणी बार रोवानू भी जरूरी थी पड़े, संसार के दुख से जो दुखी हैं वो अगर रुदन दबाते हैं या पीड़ा को दबाते हैं ज्यादा, विज्ञानी लोग बोलते हैं कि पुरुष की अपेक्षा स्त्रियों को ज्यादा स्त्रिया की बीमारी होती है, और उन स्त्रियों को होती है जो बचपन में यौवन काल में जिनके ऊपर दबाव पड़ा, जो रो भी नहीं सकी और कह भी नहीं सकी और पीती गई घूंट पीती गई, उनको स्त्रिया की बीमारी ज्यादा होती है, ऐसी व्यक्तियों की प्राय स्त्री की बीमारी होती है। अच्छा, एक तो संसार के दुख से दुखी हुए और रोना दबा तो स्त्री की बीमारी होती, दूसरा परमात्मा के लिए अगर विरह है और रोना आता है तो मन हल्का फूल जैसा हो जाता है। मैं तुम एक सवाल पूछता हूं, किसी के घर मृत्यु हो गई हो और घर के लोग छाती कूट के रो लिए रोते हो, अब रो के चुप हुए और तुम जाके उसको पूछो क्यों रोने में मजा आया ना, तो लोग आंख दिखाएंगे, आ मुंह मारो रोयो मजा नहीं बात करे, एक तो हमारा फलाना व्यक्ति मरी गया ना, मेरे रोड़ी छन के मजा आया। तो किसी के घर कुछ अनहोनी हुई, कोई मौत हुई और लोग रोकर अभी उठे, तुम उनसे पूछो क्यों मजा आया, तो वो नाराज हो जाएंगे, तुम्हें आंख दिखाएंगे, डंडा दिखाएंगे, नहीं तो दो शब्द कटु सुना देंगे। लेकिन हम सत्संग करते हैं, ध्यान कराते हैं और ऐसे विरह भक्ति की बात में तुमको ले जाते हैं, अथवा अक्रूर की कथा कहते हैं, श्री कृष्ण अक्रूर मिलन की बात, अथवा तो राम वनवास की गाथा बताते, अथवा ध्यान में ऐसे प्रयोग कराते, तुम रोते हो, जब रोदन तुम्हारा शांत हो जाए और तुम बाहर जाओ, कोई पूछे कि आज कैसा था, अरे क्या बहु मजा आएगी, हमने तो रड़ता था, आंसू लूसीन मांड तो नवरा थे, मजा आएगी, अरे संसारी ने हंसवा में जे मजा ना आवे, भगत ने रड़वा में ये ना करता हजार गणी मजा आवे। मीरा रोती है लेकिन संसारियों के जैसा उसका दुखद रोना नहीं है, सारे दुखों को नाश करने वाला रुदन है। संसार तापे तपता नाम योगो परम औषध, संसार के ताप में तपे हुए जीवों के लिए भक्ति योग ध्यान योग परम औषध है, और भक्ति योग ध्यान योग करने वाले साधक को भगत को ये श्लोक याद कर लेना चाहिए, समम पश्यन्निह सर्वत्र, समम पश्यन्निह सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम, न हीनस्तक आत्मनः ततो यान्ति परमां गतिं, ते पुरुष वह पुरुष सर्व भाव में सब अवस्थाओं में संभाव रहता है, परमेश्वर समान रीत से सब में है, ऐसा जिसके चित्त में दृढ़ होता जाएगा उतना ही उसके चित्त का राग और द्वेष उतरता जाएगा। ऐसा नहीं कि दिल्ली वाले के अंदर भगवान स्पेशल होगा और सूरत वाले में भगवान ऑर्डिनरी होगा, ऐसा नहीं है। अंग्रेज में भगवान अलग किस्म का और यहूदी में अलग किस्म का, मुसलमान में भगवान दूसरे किस्म का और हिंदू में भगवान दूसरे किस्म का, नहीं, मुसलमान के विचार एक किस्म के, हिंदू के विचार दूसरे किस्म के, अंग्रेज के विचार तीसरे किस्म के, व्यापारी के विचार चौथे किस्म के, नौकरियात के विचार पांचवें किस्म के, ये विचार मन में आते, किस्म मन में बनते, मन माया का खेल है, लेकिन मन को जो सत्ता देता है वो खेल का देखने वाला एक रस परमात्मा है। इसीलिए पति पत्नी के विचार वैमनस्य हो सकता है, पिता पुत्र के विचार में वैमनस्य हो सकता है, भाई भाई के विचार में वैमनस्य हो जाता है, पड़ोस पड़ोस के विचार में वैमनस्य हो सकता है, लेकिन पड़ोसी पड़ोसी के गहराई में परमात्मा तत्व में वैमनस्य नहीं होता है, वहां एक ही एक है। सागर के किनारे जाओ, तरंग भिन्न भिन्न दिखेंगे, बुलबुले भिन्न भिन्न दिखेंगे, भंवरे और झाग भिन्न भिन्न दिखेगी, लेकिन सागर की गहराई में देखो तो एक शांत उदधि, ऐसे सबके चित्त की गहराई में देखो तो एक शांत परमात्मा है, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद स्वरूपाय भागवत में आता है, सच्चिदानंद स्वरूपाय जगत उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयम नुमः। हम उस सच्चिदानंद को जो सत्य है, पहले भी था अभी भी है बाद में भी रहेगा, ऐसे अंतर्यामी ईश्वर को, परमेश्वर को, सच्चिदानंद स्वरूप को, जो जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का हेतु है, और तीनों ताप निवृत्त करने के लिए हम उनको नमन करते हैं। भगवान का चिंतन करने से, भगवान का नाम लेने से पाप निवृत्त होते हैं, और भगवान को नमन करने से ताप निवृत्त होते हैं। भगवान एक ऐसे, सचमुच ऐसे हैं कि जिनके लिए पूरा वर्णन तो आज कोई नहीं कर सका। भगवत स्मृति व्यथा को निवृत्त करने वाली, भगवत भाव क्लेशों को हरने वाला है, भगवान नाम पाप ताप को हरने वाला है। तो भगवान का नाम, भगवत भाव और भगवत ध्यान करने की जिनको रुचि है, वो अपने जीवन में एक आदत बना ले। जैसे कोई ब्राह्मण है कि मैं बिना सिया हुआ कपड़ा पहनूंगा, सुबह सूरज उगने के पहले नहाऊंगा, इतनी देर संध्या गायत्री करूंगा, ऐसा ऐसा भोजन ही करूंगा, उसने अपना नियम बना लिया, तो उसको लगा कि अपने जीवन को एक ऐसे सुंदर ढंग से जिया जाए। अब वो चार दिन के लिए नहीं, आजीवन वो कर लेता है कि हम ऐसे जिएंगे, ऐसे रहेंगे, पैंट शर्ट यहाँ, सिगरेट
शराब कबाब नहीं खाएंगे, तो उसने जीवन नियम बना लिए तो दो दिन के लिए नहीं बनाता, दस दिन के लिए नहीं बनाता, जीवन भर। जो शराब कबाब छोड़ देता है तो ऐसा थोड़े कि एक साल के लिए शराब कबाब नहीं, अब बाद में हम पिएंगे खाएंगे, ऐसा तो नहीं होता। तो जैसे जीवन उत्तम जीवन जीने के लिए संकल्प करके आदमी लग जाता है, ऐसे उत्तम से उत्तम परमात्मा को पाने के लिए भी संकल्प करके लग जाए कि कुछ भी हो जाए अपने चित्त को राग और द्वेष की जब आंधी तूफान आएंगे तो उसी समय भगवान की स्मृति करके चित्त की रक्षा करेंगे। जब किसी मित्र की या पुत्री की किरण की या उसकी या उसकी याद आएगी तो भगवान को याद करेंगे, तो किरण का शरीर, पुत्र का शरीर, पुत्री का शरीर तो बदलता है लेकिन आत्मा अबदल है और मेरे साथ है। मेरा शरीर भी बदलता है, रोज अन्न खाते फल खाते पुराने कण मिटते हैं, नए कण बनते हैं, ये शरीर भी बदल रहा है। माया में बदलाहट है, जैसे पंखा फास्ट घूमता है तो एक जैसा लग रहा है, ऐसे ही हर चीज में बदलाहट है, लेकिन इतनी फास्ट बदलाहट है कि पता नहीं चलता। एक मिनट में न जाने तुम्हारे शरीर में कितने कण बदल जाते, कितने बैक्टीरिया मर जाते, कितने नए हो जाते, तो सब में बदलाहट है। एक परमात्मा है जो अबदल है, उस अबदल की स्मृति करेंगे और बदलने वाले का सदुपयोग करेंगे, मोह नहीं करेंगे। महाभारत में आता है कि जो आदमी मोह करता है, रामायण ने भी कहा मोह सकल व्याधिन कर मूला, तांते उपजे पुनि भवशूला। मोह बोलते हैं उल्टे ज्ञान को, ये बना रहे, इसने मेरे को ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा जो आग्रह करते हैं ऐसे लोगों को बड़ा दुख रहता है। भविष्य पुराण में भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को कहते हैं, कि युधिष्ठिर ये जो कुछ देखता है ये सब माया है, इस माया को जो सत्य मानते हैं वे इस माया से प्रभावित हो जाते हैं। जो लोग बैठे बैठे मिट्टी का ढेला तोड़ते हैं, तिनखा तोड़ते हैं, अथवा वस्तुओं को टुकड़े करते रहते हैं, कान में नाक में उंगलियां डालते रहते हैं, अपने दांतों से नख काटते रहते हैं या उच्छिष्ट भोजन करते हैं, वस्तुओं में मिलावट करते हैं, एक दूसरों की निंदा करते हैं, अधिक धन इकट्ठा करते हैं, अधिक नींद लेते हैं, ऐसे आदमी अपनी आयुष्य और पुण्य क्षीण कर लेते हैं। लेकिन जो ठीक ठीक आहार करता है, ठीक ठीक व्यवहार करता है, संयमी जीवन जीता है, वो अपना आयुष्य और पुण्य बढ़ाकर अगर सत पद का सहारा ले तो जीवन की शाम होने के पहले वो जीवन दाता श्री कृष्ण तत्व का साक्षात्कार भी कर लेता है, समत्व योग पा लेता है। इसलिए मनुष्य अपने भाग्य का आप विधाता है। सत्संग में चार कदम चल के जाते बड़ा भारी पुण्य होता है, सत्संग में पहुंचना ये मजाक की बात नहीं। रंगवदूत महाराज किसी शास्त्र की बात कहते थे कि 21 जन्म का पुण्य जोर करे तभी आत्म साक्षात्कारी पुरुष के वचन सुनने को मिलते, 7 जन्म का पुण्य जोर करे तभी किसी संत के दर्शन का विचार आएगा, लेकिन हा जऊ छू, काल जऊ छू, आज जऊ छू, अभी जाता हूं, कल जाता हूं, परसों जाता हूं। दूसरे 7 जन्म के पुण्य जब जोर मारेंगे तब उस संत के द्वार पर पहुंचेगा, संत की जहां चरण रज पड़ी है, सत्संगियों के जे कदम पड़े हैं, ऐसी पवित्र जगह पे जाएगा, लेकिन संत आए उसके पहले मन भगा के घर ले जाएगा, अथवा सत्संग पूरा हो जाएगा बाद में पहुंचाएगा। तीसरे 7 जन्म के पुण्य जब जोर करते तभी संत के द्वार पर आएगा, दर्शन करेगा और उनकी वाणी सुनकर हृदय को गदगद कर सकेगा, पुण्य कमाकर कर लो सवारी।